जहां भी मनोयंत्र है वहां पर यह प्राणवत्ता प्रकट हो जाएगी, चैतन्य प्रकट हो जाएगा, और जहां पर यह मनोयंत्र नहीं है वहां पर आत्मा के ये दोनों गुण प्रच्छन्न हो जाएंगे। तो ठीक, यह जो जैसे शरीर है, मैं अभी जीवित हूं, इसका मतलब क्या कि आत्म तत्व के ये दोनों गुण प्रकट है मेरे शरीर के माध्यम से, क्योंकि मेरे भीतर में यह मनोयंत्र है। तो इस मनोयंत्र के माध्यम से यह दोनों के दोनों गुण प्रकट हो रहे हैं, या आत्मा का गुण चैतन्य के रूप में और प्राणवत्ता के रूप में प्रकट हो रहा है। अब समझिए, जिस समय मृत्यु होती है तब क्या होता है। यह जैसा हमने कहा कि मनोयंत्र निकल करके चला जाता है, और जो ही मनोयंत्र निकला, जो ही मनोयंत्र के निकलने के कारण वह जो चैतन्य था बंद हो गया, उसका प्रकट होना, यह जो प्राणवत्ता थी उसका प्रकट होना बंद हो गया, तो शरीर के भीतर में न तो चेतना दिखाई देती है, न शरीर के भीतर में प्राणवत्ता दिखाई देती है, क्योंकि जो मनोयंत्र शरीर के भीतर था वह शरीर को छोड़कर के चला गया। तो इसको हमने मृत्यु के नाम से संबोधित किया है। तो मृत्यु में क्या होता है वह तीसरे प्रवचन में जो चल रहा था उसका हम विस्तार से आपके समक्ष आख्यान नहीं कर पाए थे। तो वह क्या होता है कि मृत्यु के समय यह जैसा हमने कहा कि हमारे भीतर में यह तो स्थूल शरीर, ऊपर का स्थूल शरीर, इसके भीतर में सूक्ष्म शरीर और उसके भीतर में कारण शरीर, ये तीन शरीर वाला माना गया है, और इसको वेदांत की दृष्टि से पंचकोश भी कहते हैं। जैसे स्थूल शरीर है उसको कहा गया अन्नमय कोश, जैसे पांच कोशों की बात आप वेदांत में पढ़ते हैं, एक तो है पहला अन्नमय कोश, उसके भीतर में है प्राणमय कोश, उसके भीतर में है मनोमय कोश, उसके भीतर में है विज्ञानमय कोश और उसके भीतर में आनंदमय कोश। अब आज का जो वैज्ञानिक है उसने अपनी दृष्टि से चार लेयर्स की बात कही है। एक पैलियंटोलॉजिस्ट हो गए हैं पीरे चिलाड शारिन, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है द फिनोमेनॉन ऑफ मैन, यहां पर अपने यहां ग्रंथालय में है। द फिनोमेनॉन ऑफ मैन में उन्होंने मनुष्य को समझने का प्रयास किया है, और उसमें वे कहते हैं, वे बताते हैं कि एक तो एक फिजिकल लेयर है, वे कह रहे हैं चार प्रकार के लेयर की वे मानो धारणा करते हैं। एक फिजिकल लेयर है, दूसरा वो बायोस्फेरिकल लेयर है, तीसरा वे कहते हैं साइकिकल लेयर है, और चौथा वे न्यूस्फेरिकल लेयर कहते हैं। ये चार लेयर्स हैं, हमने पंचकोश की बात कही, ये चार लेयर्स की बात कर रहे हैं। मानो चिंतक हैं, वे समझना चाहते हैं कि मनुष्य क्या है। तो जैसे उन्होंने कहा कि अब फिजिकल लेयर है पहला, ठीक है, जैसा हम अन्नमय कोश कहते हैं फिजिकल लेयर है, इसके भीतर में बायोस्फेरिकल लेयर है, और उसके भी भीतर में वे कहते हैं कि साइकिकल लेयर है, और उसके भी भीतर में वे न्यूस्फेरिकल लेयर की कल्पना करते हैं। अब ये जो न्यूस्फेरिकल लेयर है इसको हमने अपनी भाषा में विज्ञानमय कोश कहा है। अब उसके बाद जो आनंदमय कोश की बात है, तो आनंदमय कोश की बात वे ठीक बता नहीं पाए, माने जिसको हम कहेंगे कि उसकी कल्पना वे नहीं कर पाए। पर एक फ्रेड हॉयल का नाम आपने सुना हो, ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट, तो फ्रेड हॉयल ने एक बैकग्राउंड मटेरियल की कल्पना की है कि एक बैकग्राउंड मटेरियल है जहां से मानो समस्त संसार निकला है। तो आनंदमय कोश की जो हमारी धारणा है वह फ्रेड हॉयल ने जो चिंतना की है उस चिंतना से यह धारणा मेल खा सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसमें हम नहीं जाना चाहते। तो हम यह कह रहे थे तीन हमारे शरीर शास्त्र की दृष्टि से, या जिसे हमने कहा कि स्थूल शरीर, उसके भीतर में जिसको हमने कहा सूक्ष्म शरीर, उसके भीतर में कारण शरीर, या वेदांत की दृष्टि से पंचकोश, अन्नमय कोश, उसके भीतर में प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब इसको ऐसा कहें कि जो हमारा ऊपर का स्थूल शरीर है वह अन्नमय कोश के समान है, और हमारे भीतर में जिसे हमने सूक्ष्म शरीर कहा, तो लिंग शरीर कहा, तो यह जो सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर है उसके अंतर्गत ये तीन कोश आते हैं, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, और उसके बाद में जो कारण शरीर है उसको हम कह सकते हैं वह आनंदमय कोश है। ये तीन शरीर या पांच कोश, ऐसा यहां पर कहा गया। तो मृत्यु के समय यह स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है, पर यह जो सूक्ष्म शरीर है तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर पर सवार होकर के निकल जाता है, इसी को हमने जीव कहा, जीव या जीवात्मा। यह जो सूक्ष्म शरीर है कारण शरीर के साथ युक्त होकर के संयुक्त होकर के जुड़ करके शरीर को छोड़ करके निकल गया, इसको कहते हैं जीव या जीवात्मा। हम कहते हैं जीव निकल गया, और इसी को यदि सामान्य भाषा में कहें तो यह मनोयंत्र है। जो मनोयंत्र निकल जाता है तो मनोयंत्र का मतलब हुआ सूक्ष्म शरीर, धन कारण शरीर। अब इसको भी हमने समझाया था सूक्ष्म शरीर क्या है। यह कहा था यह जो सूक्ष्म शरीर है वह कैसे बनता है। मृत्यु के समय हमने कहा कि हमारे जितने भी संस्कार हैं वे आकर के खड़े हो जाते हैं। जैसे इस जीवन में हमने बहुत से संस्कार अर्जित किए हैं, हम आने वाले रविवार में कैसे ये संस्कार अर्जित होते हैं इस पर विचार करेंगे। और इस प्रकार पांच प्रवचनों में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत की जो विवेचना है उसे समाप्त करेंगे। तो हम संस्कार अर्जित कैसे करते हैं, ये जो संस्कार कहलाता है तो ये चिपकता कैसे है, ये हमारे मन में आकर के कैसे चिपक जाता है, इसकी चर्चा अगले रविवार को करेंगे। तो हम अभी यह कह रहे थे यह जो सूक्ष्म शरीर, ये जो मृत्यु के समय जितने भी हमारे संस्कार हैं आकर के खड़े हो जाते हैं, आकर के खड़े हो गए इस जीवन में जितने संस्कार अर्जित किए वे, और पुराने जीवन में पहले पूर्व जन्मों में जितने संस्कार हमने अर्जित किए हैं वे आकर के सबके सब खड़े हो जाते हैं। और इनमें खड़े होने के बाद आपस में मेल होता है इन संस्कारों का, और इन संस्कारों में जो सबसे प्रबल संस्कार होते हैं वे कर्म के सिद्धांत के अनुसार अलग हो जाते हैं, और अलग होकर के ये एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। इसको कहते हैं प्रारब्ध। यह बड़ी ही विचित्र बात है कि जैसे कि हमारे भीतर मृत्यु के समय चिकित्सक की दृष्टि से मेरी मृत्यु हो गई, परंतु मैं भीतर में चैतन्य वाला हो जा, मैं भीतर में होश में हूं, वहां पर मानो मेरे सारे संस्कार आकर के खड़े हो गए हैं। तो इस जन्म में जितने मैंने अर्जित किए वे सारे के सारे, और पूर्व जन्मों में मैंने जो अर्जित किए हैं वे सारे के सारे आकर के खड़े हो गए, आपस में मेल होता है। और इनमें जो प्रबलतम संस्कार होते हैं वे अपना फल देने के लिए अलग हो जाते हैं। तो ये जो अलग हो गए संस्कार है इनको हम प्रारब्ध के नाम से पुकारते हैं, यह प्रारब्ध है। और बाकी जितने हैं तो बाकी जितने हैं वे संचित हो जाते हैं, तो वे संचित हो गए, और बाकी जो अलग हुए संस्कार हैं वे प्रारब्ध हो गए। ये जो प्रारब्ध संस्कार हैं वे फिर उन संस्कारों के अनुरूप मेरा जो सूक्ष्म शरीर है उसको रूप प्रदान करते हैं, उसे वे रूप देंगे। कि जैसे मैंने कहा था अत्यंत स्थूल भाषा में यदि हमने अत्यंत गर्भित कर्म किए हैं इस जीवन में तो फिर वैसे संस्कार बड़े प्रबल होंगे, और यदि मैं पशु की योनि में जाऊंगा उन गलत बहुत खराब कर्मों के फल स्वरूप, तो मेरा यह जो सूक्ष्म शरीर है उसको वे उस प्रकार का रूप देंगे ये संस्कार, और जाकर के फिर मैं उस पशु योनि में समा जाऊंगा, वहां पर मैं चला जाऊंगा, यह मेरी गति होगी। और यह जो समा गया प्रारब्ध जो है उसने मेरे सूक्ष्म शरीर को वैसा रूप दे दिया, और यह जो बाकी जो बचा हुआ संस्कार है वह कारण शरीर में रहता है, उसको कहते हैं कारण शरीर। यही दोनों का अंतर है। सूक्ष्म शरीर उसे कहते हैं जो प्रारब्ध संस्कारों का खजाना है, और कारण शरीर उसे कहते हैं जो संचित संस्कारों का खजाना है। दोनों का यही अंतर है। यह जो प्रारब्ध शरीर है, ये जो प्रारब्ध संस्कार है वे मुझे इस अगले जीवन में भोग देंगे। अभी ये मुझे दे रहे हैं, ये प्रारब्ध मुझे मानो ये मुझे भोग दे रहे हैं, प्रारब्ध का फल भोग मैं अभी कर रहा हूं यह प्रारब्ध। और जो संचित है वह क्या हो रहा है, संचित संस्कार वह मेरे कोष में जमा है, कारण शरीर के भीतर में जमा है। तो अभी जो मेरा जो कुछ हो रहा है मैं प्रारब्ध के फल स्वरूप हो रहा हूं, इस प्रकार का चित्रण हमारे समक्ष शास्त्र करते हैं। तो मरने के समय ये सारे संस्कार जो आकर के खड़े हुए आपस में मिले, जो संस्कार प्रबल हुए वे प्रारब्ध का निर्माण करते हैं, और बाकी ये संचित में इन दोनों को मिलकर के हम कहते हैं मनोयंत्र, इसी को कहते हैं जीव या जीवात्मा। और ये जब मिलकर के चले तो प्रारब्ध के अनुसार मुझे नया जन्म मिलता है, मैं जन्म का भोग करता हूं, और कारण शरीर के भीतर में मेरे सारे संचित संस्कार विद्यमान रहते हैं, और इस कारण शरीर में ही, कारण शरीर के खजाने में ही इस जन्म में जो मैं कर्म करता हूं उसके संस्कार भी जाकर के चिपकते हैं। जैसे मुझे यह शरीर मिला तो मैं तो कहूंगा कि ठीक है मैं अपने प्रारब्ध का भोग कर रहा हूं, पर मैं नए संस्कार भी तो बना रहा हूं, कि भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करता हूं, भिन्न भिन्न प्रकार के विचार अपने मन में पोषित करता हूं, तो ये कर्म और विचार ये दोनों मेरे भीतर में संस्कार का निर्माण करते हैं, तो इस जीवन के ये संस्कार कहां जाकर के जमा होते हैं, इसको कहते हैं ये संचित। ये जो संचित संस्कार हैं, ये भी मेरे उस कारण रूपी खजाने में चले जाते हैं। वह जो कारण शरीर है, उसी कारण शरीर में ये सारे संस्कार जाकर के संचित हो जाते हैं, और मृत्यु के समय यह सारा का सारा आकर के मेरे सामने खराब हो जाता है। कारण शरीर में जितने भी संस्कार संचित हैं, वे आकर के प्रकट हो गए। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि कारण शरीर उसे कहते हैं जो संस्कारों का खजाना है, जहां पर संस्कार जाकर के जमा हो गए हैं और जमा होते रहते हैं। और सूक्ष्म शरीर क्या है, जो प्रारब्ध संस्कारों के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। यह दोनों का अंतर, जैसे मैंने कहा, बारंबार इसको दोहराएंगे क्योंकि यह सूक्ष्म है, इसको समझने में बड़ी जटिलता मालूम पड़ती है। तो बारंबार दोहराने के फलस्वरूप यदि यह हमारे दिमाग पर बैठ जाए तो बैठ जाए, इसीलिए हम इसको बारंबार दोहराते हैं। तो यह जो पुनर्जन्म का सिद्धांत कहता है कि देखो, तुम ये भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार अर्जित कर रहे हो अपने भीतर में, तो मृत्यु के समय यही होगा कि कारण शरीर में जितने भी तुम्हारे संस्कार जमा हैं, इस जन्म के पूर्व जन्मों के सब निकलेंगे, और वे तब फिर तुम्हारे आगे का प्रारब्ध तय करेंगे, उसके अनुसार तुम्हारा प्रारब्ध होगा। तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो वे अच्छे कर्म तुम्हें फिर ऊपर भी ले जाएंगे। जैसे गीता में हम पढ़ते हैं कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। वहां पर यह कहा गया कि जिसके संस्कार बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है, ऊर्ध्व चले जाएंगे मृत्यु के बाद, देव योनि में चले जाएंगे, और जिनके भीतर में रजोगुण हैं वे बीच में रहेंगे, मनुष्य योनि प्राप्त करेंगे, और जिनके भीतर में तमोगुण का आधिक्य है वे फिर जघन्य वृत्तिस्थाः कहा कि वे निम्न योनियों में चले जाएंगे। तो हमने यह भी कहा था कि हमारे यहां जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, उसमें यह माना गया है कि मनुष्य पीछे भी जा सकता है, नीचे की योनि में भी जा सकता है। इसका भी हमने विशद विश्लेषण पिछली चर्चा में किया है, पीछे जा सकता है, वह पशु योनि में जा सकता है, पर पशु योनि में गया, समझ लीजिए कि कुत्ते की योनि में गया, तो केवल अपने संस्कारों का भोग करने के लिए, क्षय करने के लिए, उन्हें सब भोग योनि कहते हैं। जैसे देव योनि भी भोग योनि है, उसी प्रकार पशु योनियां भी भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि को छोड़कर के बाकी सभी योनियां भोग योनियां हैं, वहां पर केवल भोग के लिए जाया जाता है, और जो नए संस्कार उत्पन्न किए जाते हैं केवल इस मनुष्य योनि में ही किए जाते हैं, इसीलिए इसको क्षेत्र कहा है। ये जो मनुष्य योनि है इसको क्षेत्र कहा है। क्षेत्र माने खेत, माने यहीं पर फसल उत्पन्न की जा सकती है, मनुष्य योनि में ही फसल उत्पन्न होती है, देव योनि में फसल उत्पन्न नहीं होती, जो हमने जमा किया है उसका हम भोग करते हैं। पशु योनि में भी फसल नहीं होती, जो हमने किया है उसका हम फल भोगते हैं, पर फसल उत्पन्न करने वाली जो योनि है वह मनुष्य योनि है। यहां पुरुषार्थ करते हैं, अपने पुरुषार्थ के बल पर कर्मों को सुधारते हैं, अच्छी फसल उत्पन्न करते हैं, बुरी फसल उत्पन्न करते हैं, तो यह निर्भर करता है हमारे पुरुषार्थ पर, और वह यहां पर। तो अब आप कह सकते हैं कि यह कह सकते हैं कि यह चर्चा हुई तो आपने कहा कि अभी का मेरा यह जो जीवन है वह प्रारब्ध के फलस्वरूप है, मैंने पिछले जन्म में जो संस्कार अर्जित किए उन संस्कारों का एक भाग बड़ा प्रबल हो गया, तो वह प्रबल भाग अभी प्रारब्ध के रूप में इस जीवन में मुझे दिखाई देता है, तो मैं यह जो भोग रहा हूं वह प्रारब्ध के फलस्वरूप। तो मैंने कहा हां, तो क्या इसका यह मतलब है कि मैं फिर पुरुषार्थ कैसे? आप कहते हैं मैं जो कुछ भी करूंगा वह तो इस प्रारब्ध से ही नियंत्रित होगा, कि मैंने अपने प्रारब्ध का भोग किया है या मैं कर रहा हूं, तो मैं फिर अपने कर्मों को सुधार कैसे सकता हूं? मैं अपने कर्मों को सुधारना चाहूं तो क्या ये प्रारब्ध मुझे कर्मों को सुधारने देंगे? मैं तो अपने प्रारब्ध से बंधा हुआ हूं, प्रारब्ध जैसा मुझे चलाएंगे मुझे चलना पड़ेगा, तो फिर मैं अच्छे कर्म करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? यही जिसको भाग्य और पुरुषार्थ कहते हैं। प्रारब्ध को आप समझ लीजिए भाग्य, यह भाग्य है, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको हम भाग्य कह देते हैं, यह प्रारब्ध है उसका नाम हो गया भाग्य। तो यदि मनुष्य भाग्य से बंधा है तब फिर पुरुषार्थ करने का क्या मतलब, पुरुषार्थ का क्या तात्पर्य है? एक बहुत बड़ा प्रश्न आया कि पुरुषार्थ का तात्पर्य क्या हुआ, यदि मैं पूरी तरह से भाग्य के द्वारा नियंत्रित हूं अपने प्रारब्ध से नियंत्रित हूं तो मैं कोई नया कर्म कैसे कर सकता हूं अपनी इच्छा के अनुकूल। बट जो भी करूंगा ये तो प्रारब्ध ही मुझे करा रहा है। यदि मेरे प्रारब्ध में अच्छे संस्कार होंगे तो मैं अच्छा कर्म करूंगा, तो मैं अच्छे संस्कार ना हो तो मैं बुरे कर्म करूंगा। तो मैं इससे बच कैसे सकता हूं, यह एक प्रश्न बहुत जिसे कहेंगे स्वाभाविक प्रश्न हमारे समक्ष आता है। इसका उत्तर भी हम अगली बार देंगे। तो अगली बार जो उत्तर देंगे इन दो प्रश्नों का, एक तो वह प्रश्न है कि संस्कार हम कैसे अर्जित करते हैं, ये संस्कार कैसे मानो आते हैं, कर्म के द्वारा या विचार के द्वारा, तो संस्कारों का अर्जन कैसे होता है। और दूसरा प्रश्न जो है यह भाग्य और पुरुषार्थ का। यदि मैं पूरी तरह प्रारब्ध से बंधा हूं तो फिर क्या मतलब है पुरुषार्थ करने का। मनुष्य करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। और हम पढ़ते भी हैं, कोई है सोई जो राम रचि राखा, को कर इस तरह बढ़ा वही साखा। मैंने ऐसी बातें भी हमें प्राप्त होती हैं जहां पर ऐसा लगता है कि हम तो प्रारब्ध से बंधे हैं। अरे भाई, हम तो अपने पुराने कर्मों से, प्राक्तन कर्मों से बंधे हुए हैं, तो हम नया कर्म कैसे कर सकते हैं। अब भक्ति आएगी, साधना हमारे द्वारा होगी, अगर हमारे भाग्य में लिखा होगा तो होगी साधना, अगर भाग्य में नहीं लिखा होगा तो हम साधना करेंगे भी तो साधना नहीं होगी। यह एक भाग्यवादी दृष्टिकोण हमारा बन गया है। माने भारत को जो दोष दिया जाता है दर्शन को, इसलिए कि ये सब भाग्यवादी हैं, कि हम बड़े भाग्यवादी हैं, हम प्रारब्धवादी हैं और इसलिए हम निछल्ले बन जाते हैं, हम इस जीवन में कुछ करना नहीं चाहते, यह कह करके कि भाग्य पर दोषारोपण हमने कर दिया कि भाई हमारा भाग्य ही ऐसा है, हमारा प्रारब्ध ही ऐसा है, तो हम क्या करें। तो प्रारब्ध कहां तक हमारे लिए फलवती होता है, एक, और इस प्रारब्ध में जो फल हमें मिल रहे हैं इसमें पुरुषार्थ करने की कोई गुंजाइश है क्या, यह प्रश्न। तो इस प्रश्न के साथ मैं समझता हूं कि हमारी यह जो पुनर्जन्म और कर्म की चर्चा है वह पूरी हो जाएगी, तो अगले रविवार को इस पर चर्चा करेंगे। तो अभी तक जो हमने कहा 5 मिनट में उसका सार संक्षेप ले लें, जो 4 प्रवचनों में हमने कहा। पहले हमने कहा था विज्ञान से, हमने लिया विकासवाद से, कि विज्ञान के क्षेत्र में, जीव शास्त्र के क्षेत्र में इस जीवन को समझने की अपनी एक अलग प्रक्रिया है। डार्विन से यह प्रक्रिया शुरू हुई, उन्होंने जीवन को समझने का प्रयास किया और हमारे समक्ष जीवन की प्रक्रिया को उन्होंने जैसा समझा व्यक्त कर दिया। क्या कहा, यह जो जीवन की नदी है तो वह बहती है, वहां से शुरू होती है अमीबा से, वहां से निकल करके निम्नतर योनियों से उच्चतर योनियों में जाती है और इस प्रकार चलती 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 और फिर वह मनुष्य योनि तक आती है और उसके बाद उन्होंने कोई लक्ष्य नहीं देखा। पर यह जो वेदांतवादी है उसने स्वीकार किया कि ठीक है, तुम जीवाणु कोष से, अमीबा से जीवन की नदी का प्रारंभ मानते हो तो हमें किसी प्रकार का टकराव नहीं है, हम भी तुम्हारी बात से सहमत होते हैं, परंतु तुम जो कहते हो कि निम्नतर योनि से उच्चतर योनि में यह जो जीवन का प्रवाह बहता है उसके जो तुम कारण बताते हो, एक कारण तुम कहते हो सेक्सुअल या नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा कारण जो कहते हो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसको हम स्वीकार नहीं करते। देखो, हम तुमको अपने ढंग से, अपनी दृष्टि से पूरी प्रक्रिया का मतलब समझा देते हैं और वेदांति समझा देता है और वह यह भी बताता है, तरह तरह से प्रश्न पूछता है विकासवादी से। अच्छा, तुम कॉन्शियसनेस को तो मानते हो ना। हाँ, मानते हैं। तो कॉन्शियसनेस को कैसे मानते हो, तो विकासवादी ने अपने ढंग से कहा कि बीच में कुछ रासायनिक पदार्थ इकट्ठे होते हैं, उसमें से कॉन्शियसनेस निकलता है, चैतन्य प्रकट हो जाता है। तो फिर हमने, यह वेदांतवादी कहता है कि जब तक अमीबा के भीतर में वे सारे के सारे गुण न हो तब तक यह प्रकट कैसे होगा कि शून्य से किसी की उत्पत्ति नहीं होती। तो जिसको तुम अमीबा कहते हो, जीवाणु कोष कहते हो, उसके भीतर में सारी चेतना निहित है, सारा उसके भीतर में दिव्य भाव निहित है, मानो पूरी ब्रह्मता, पूरी पूर्णता उस एक जीवाणु कोष के भीतर में है। और हम यह मानते हैं कि उस छिपी भी पूर्णता को प्रकट करना यही जीवन का नाम है, कि जीवन या जो विकास हो रहा है तो उस छिपी भी पूर्णता को व्यक्त करने के लिए यह विकास हो रहा है, ऐसा उसने समझाया। और उस प्रक्रिया में तरह तरह से हमने बातों को देखा कि जैसे हेरिडिटरी ट्रांसमिशन है, एनवायरमेंटल है, कि यह जो मनुष्य का जन्म होता है तो कैसे होता, उसमें आनुवंशिकता कितनी होती है, वातावरण का प्रभाव कितना होता है, तो वह भी सिद्धांत आपके समक्ष हमने चर्चा के लिए लिए थे। कि आज के जो मॉडर्न जो बायोलॉजिस्ट हैं, जीव शास्त्री हैं, तो वे किस दृष्टि से देखते हैं कि वे लोग मानते हैं कि जैसे एक व्यक्ति का, एक बालक का जन्म हुआ, एक बालिका का जन्म हुआ, तो उसके पीछे में वे केवल एक्सीडेंट मानते हैं। जैसे हमने कहा कि जब पुरुष और नारी का संयोग होता है तो कितने एक में कितने रज कण होते हैं, कितने वीर्य कण होते हैं, पर एक वीर्य कण ही कभी एक रज कण के साथ संयुक्त होता है, तो संयुक्त होकर के फर्टिलाइज करता है, झाइगोट बनाता है। तो जो झाइगोट बनाता है तो इसके भीतर में जो वैज्ञानिक है, जो जीवशास्त्री है, वह कोई नियम नहीं देखता, ऐसा नहीं देखता कि इसके पीछे में कोई नियम है। वो तो एक एक्सीडेंट भी मानता है कि हाँ ठीक है, लक्ष लक्ष शुक्राणुओं में से एक शुक्राणु किसी रजाणु के साथ संयुक्त तो हो जाता है, परंतु हमारे यहाँ ऐसा उसको एक्सीडेंटल नहीं माना गया, बल्कि हमारे यहाँ तो यह कहा गया कि यह जीव अपने भीतर की सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए उपयुक्त माता पिता देखता है और चला जाता है। जहां पर गीता में हम पढ़ते हैं कि वह जिस समय मृत्यु को प्राप्त होता है तो फिर पौर्वदेहिकम, अपने पूर्व संस्कारों को प्रकट करने के उपयुक्त माता पिता को वह खोज लेता है। तो इसीलिए हमने कहा कि जीव शास्त्री कहता है कि माता पिता पुत्र को जन्म देते हैं, और हमारा वेदांत कहता है कि माता पिता पुत्र को जन्म नहीं देते हैं, बल्कि यह पुत्र ही माता पिता को खोजता है, यह संतान ही माता पिता को खोजती है। कि माता पिता सोचे कि मैं संतान को जन्म दे रहा हूं, यह गलत है वेदांत की दृष्टि से। संतान ही अपने माता पिता का चुनाव करती है कि किस माता पिता के पास मैं जाऊं, यह कर्म का अचल नियम है। तो जो हेरिडिटरी ट्रांसमिशन है, जो आनुवंशिकता है, वह केवल शरीर तक ही सीमित है, मन तक नहीं। यह जो जीव है अपना मन अपने साथ लेकर के चलता है, माता पिता का मन उसमें संचरित नहीं होता, वह उसके भीतर में मनो अनुक्रमित तो नहीं होता, वह तो केवल पिता से और माता से अपने शरीर के उपादान ग्रहण करता है, बस इतना ही, शरीर के उपादान ग्रहण करता है। इसीलिए हम देखते हैं, बहुत बहुलांश में देखते हैं कि ठीक है कि रूप में सामने हो सकता है, आवाज में सामने हो सकता है, पर मन की प्रवृत्तियों में सामने नहीं होता है। बल्कि जो सामने थोड़ा दिखाई देता है कि माता पिता का मन और पुत्र या पुत्री का मन जो सामने दिखाई देता है, इसके कारण कि बहुत दिनों तक उनके संसर्ग में रहते हैं, एक तो 10 महीने तक वह जीव पेट में ही रहता है माता के, और फिर उसके बाद बड़े होते तक माता पिता के साथ में रहता है, तो एक मानसिकता की छाप, मानसिकता का प्रभाव संतानों पर पड़ता है। इसलिए मनोवृत्ति में कहीं कहीं समानता दिखाई दे सकती है, परंतु यह जो जीव है अपना मन स्वयं अलग लेकर के आता है, माता पिता से वह अनुक्रमित तो नहीं होता, यह इसका तात्पर्य है। वेदांत कहता है कि जीव माता पिता से अपना शरीर प्राप्त करता है, मन प्राप्त नहीं करता, यह तो मन संस्कार युक्त है, यह जीव अपने संस्कारों को लेकर के चला करता है। जबकि ये जो है बायोलॉजिस्ट है, वे ऐसा मानते हैं कि माता पिता के मन के संस्कार भी इसके भीतर में आते हैं, बिल्कुल गलत है, वह कभी प्रमाणित नहीं होता। नहीं तो हम ऐसा पाते हैं कि सामान्य माता पिता हैं और प्रातिबुद्धि संतान जन्म लेती है, तो ये इसको तो हम समझा नहीं सकते कि वह मन लेकर के आया है। हम देखते हैं कि पिता तो घोर संसारी है, और हम देखते हैं लड़का है उसके भीतर उच्च आध्यात्मिकता है, या पिता तो बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उनमें बड़ी धर्म प्राणता है, और लड़के के भीतर में देखते हैं वह घोर संसारी, ये भी बातें हमें देखने में आती हैं। तो हम इसका स्पष्टीकरण आनुवंशिकता के बल पर नहीं कर सकते, हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि जीव अपने संस्कार लेकर के चलता है, मानसिक संस्कार लेकर के चलता है। तो पिता से क्या प्राप्त करता है या माता से क्या प्राप्त करेगा, शरीर प्राप्त करता है। तो ऐसा हो सकता है कि पिता का शरीर अच्छा स्वस्थ शरीर है, और जीव अपने प्राक्तन कर्मों के कारण, पूर्व कर्मों के कारण, उसके भाग्य में यदि है कि वह भी सबल देह वाला होगा तो सबल देह वाले माता पिता मिलेंगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे, वो सब अच्छा होगा। तो तात्पर्य यह है कि यह भौतिक, जहां तक शरीर तक का प्रश्न है, भौतिक दृष्टि से वहां तक तो हम आनुवंशिकता को स्वीकार करते हैं वेदांत की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, पर जहां पर मन के संस्कारों का संबंध है हम आनुवंशिकता को नहीं स्वीकार करते। यह अंतर है, यह भी हमने विस्तार से लिया था, और यह कहा था कि आनुवंशिकता के बल पर यह जीवन को नहीं समझाया जा सकता कि आया। और फिर आनुवंशिकता के बल पर अगर यही कहा जाए कि आनुवंशिकता ही अनुक्रमित होती है, तब तो एक माता पिता की कितनी संतानें होती हैं, तो सबके भीतर में वैसा आना चाहिए। पर हर संतान अलग अलग है, जैसे एक वृक्ष में हजार फल होते हैं, पर आप कभी भी दो फलों को एक समान नहीं पाइएगा। ये हजार फल होते हैं तो हजार फल अलग अलग होते हैं, भले ही वे उसी एक वृक्ष से निकले हैं। तो ठीक इसी प्रकार यह जो है यहाँ पर भी वही क्रम है कि हम एक ही माता पिता से भरे वहां पर दस भाई उत्पन्न होते हों, दस संतानें उत्पन्न होती हों, पर दसों में बिल्कुल अलग अलग मानो उसकी मनोवृत्तियां, उसके जो संस्कार हैं, ये सब भिन्न भिन्न होते हैं। या अब एक बात पर जो अभी तक जिसको ठीक ढंग से नहीं समझाया जा सका है उसका उल्लेख कर दें, पिछली बार अगली बार उसकी चर्चा करेंगे। वह यह है कि जैसे आपने पौधे देखे, एक कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि आप तुरंत काट दीजिए, जमीन में उसे आप लगा दीजिए, बस उसके बाद वह पौधा जी जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, जिसे कहते हैं कि यह आपका ये जो बेशरम का जो झाड़ होता है, यह पौधा है कि आप डाल काट दीजिए, दूसरी जगह अगर गिर भी जाए उससे बेशरम का पौधा पैदा हो गया और वह चलने लगा, उसमें बीज की संतति नहीं है। यह जो बेशरम का पौधा है, तो जैसे अन्य जो हैं वे पौधा लगाने से होते हैं, ये बीज लगाने से होते हैं, तो यह तो आप लगा दें और वह उसके बाद निकल जाता है। एक अच्छा दूसरा होता है एक प्रकार का, जिसे कहेंगे कि एक क्या कहेंगे उसे, कीड़ा ही कह लें। तो जैसे एक प्रकार का कीड़ा होता है, आप उसे काट दीजिए, तो काट दीजिए उसके दो टुकड़े हो गए तो दोनों के दोनों जिंदे रहते हैं, दोनों ही जिंदे हैं, मरे नहीं हैं। यदि आप इन दो के चार टुकड़े कर दें तो ये चारों टुकड़े जिंदे हैं। यहां पर अब इसमें यह प्रश्न उपस्थित होता है, यदि एक के भीतर में एक जीव है तो क्या चार जीव हो गए? और यह जो हमने वृक्ष के भीतर में भी हमने जो जीव माना है, जीव का मतलब मनोयंत्र, जैसा आपके सामने कहा कि यह जो मनोयंत्र है वह वनस्पति के भीतर भी है, घास के भीतर भी है, और यह मनोयंत्र मनुष्य के भीतर भी है, पर अत्यंत क्रूर अवस्था में है, निकृष्ट अवस्था में वनस्पति के भीतर का मनोयंत्र है, और उसी का धीरे धीरे विकास होता 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 वह मनोयंत्र मानव में जाकर के अत्यंत विकसित होता है। तो उसके भीतर में मनोयंत्र है, और जहां भी मनोयंत्र होगा वहां पर आत्मा का चैतन्य प्रकट होगा, आत्मा की प्राणवत्ता प्रकट होगी। तो हम देखते हैं वनस्पति के भीतर में मनोयंत्र होने के कारण उसके भीतर वह चैतन्य प्रकट दिखता है, उसके भीतर प्राणवत्ता दिखाई देती है, हरी हरी दूध लहलहाती है, ऐसा लगता है उसके भीतर में संवेदना का बोध होता है। और सर जगदीश चंद्र बोस ने यह तो प्रमाणित करके दिखा दिया कि वनस्पतियों में भी उसी प्रकार की संवेदनाएं होती हैं जैसे अन्य प्राणियों में होती हैं, तो उन्होंने यह दिखा दिया। तो अब यह जो है कि हमने एक वनस्पति से एक, जैसे हमने कहा कि बेशरम का पौधा है, उसके तीन टुकड़े करके लगा दिए, तीन हो गए तो तीन जीव बन गए क्या? एक कीड़े को हमने पांच भाग में काट दिया तो उसमें पांच जीव उत्पन्न हो गए क्या? यह प्रश्न, इस प्रश्न पर भी अगली बार विचार करेंगे कि इसको हमने किस दृष्टि से देखा है। यद्यपि इस पर सार्थक विचार यहाँ पर नहीं हो पाया, पर इस पर विचार करेंगे। तो तीन हैं, जो तीन प्रश्न हैं उन पर विचार करेंगे। पहला प्रश्न जैसा हमने कहा कि संस्कार कैसे होते हैं, दूसरा प्रश्न जिसको हमने कहा कि यह जो भाग्य या प्रारब्ध है, यदि वही हमारी जीवन प्रणाली का नियमन करता हो तो फिर पुरुषार्थ के लिए स्थान कहां पर है, और तीसरा यह जो चली, यह जिसे संतति कहेंगे या सनातनत्व की परंपरा कहेंगे, यह जो चली वनस्पति में या कीड़े में, तो यह जो एक कीड़े के पांच जो जीव उत्पन्न हो गए तो पांच हो गए ना, वह एक ही है, यह जो एक समस्या है उस समस्या को वेदांत की दृष्टि से कैसे देखा जाए, अध्यात्म की दृष्टि से कैसा देखा जाए, उस पर विचार करेंगे और ये जो प्रकरण चला है उसकी समाप्ति करेंगे। आइए शांति पाठ कर लें। विगत चर्चाओं में चार रविवार को पुनर्जन्म को लेकर के चर्चा कर रहे थे। देवर्षि नारद राजा प्राचीन वर्ग को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हैं। चर्चा के प्रसंग में वे यह भी बताते हैं कि किस प्रकार जीव सद्गति और दुर्गति को प्राप्त करता है और अंत में उनके समक्ष समर्पण का पथ प्रशस्त करते हैं। प्राचीन बरही से विदा लेकर के देवर्षि नारद सिद्ध लोक को चले जाते हैं और प्राचीन बरही भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों पर सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम की ओर प्रयाण करते हैं और वहां पर अंत में भगवान के साथ सारूप्य प्राप्त करके धन्य हो जाते हैं।